ओम कृष्ण मत्ते जगद्गुरु बराबर ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रिय आत्मन, आदरणीय भूदेवों ने एक से एक सुंदर भजन हमारे सामने बहुत आनंद से प्रस्तुत किया, बड़ा आनंद आया। शुरू में एक कहूं कि मल्लिकार्जुन भी बहुत अच्छा रहा, बार बार मैं भी सुनता रहा, काफ़ी लोग भी हैं, इसलिए हमारे जो चार भूदेव बैठे हुए हैं, मैं तो चार वेदों ज्ञाता हूँ, एक एक वेद हैं। बापू जी हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। तो शुरू में ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि 12 कल 12 आज 11 12 दो दिन आप मुझे दीजिए, मैं गाड़ी दूंगा जाकर घर से अपने कपड़े लेके आ जाइए। तो शायद मेरी मन की बात आप समझ गए हो। तो अभी दो दिन तो नहीं जाने दूंगा, और आप लोगों से बताऊंगा 4 से 6 भी भजन होगा, प्रवचन भी होगा, रात में भी होगा, खूब आनंद लूटिए इनका हमारा दोनों का। इसलिए अभी विदाई वाला गीत नहीं सुनाएंगे, विदाई करेंगे। इसलिए पहले बता दें। भजन तो सारे अच्छे थे, इसे थे हमारे बापू जी ने जो भरोसे की बात की, बड़ी सुंदर थी। अगर आप संतों के जीवन को देखें तो पूरे विश्व में जबरदस्त प्रचार हमारे संतों का रहा है, जिसमें कबीर साहब का ज़्यादा रहा। अब खुलेआम उन्होंने कहा है, खंडन की बात नहीं है, समझने की बात है। ना मैं काशी में, ना मक्का में, ना मदीने में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो यहाँ ये मक्का मदीना और मंदिर की बात नहीं है, बुरा न मानिए, बड़ी ऊंची बात है। आप जब मंदिर नहीं जाते थे तो भी दुखी थे, और जाके भी दुखी हैं तो विश्वास क्या। आप मक्का मदीना गए, जैसे गए तो वैसे वापस आ गए। जा विचार कीजिए, हमारा तो मुस्लिम लोगों से संबंध है। मैं कहता हूँ शैतान को पत्थर मार के आते हैं तो तुम यहाँ के शैतान क्यों बन जाते हो, वहाँ तो शैतान को पत्थर मारते हो, तो कहीं उल्टा शैतान तुम्हें पत्थर मार के नहीं वापस किया। आ तो एक बात करता, मुसलमान मेरे प्रिय हैं, जब बात होती चलते। तो हरिद्वार का खंडन नहीं है, मक्का मदीना खंडन नहीं है, काशी का खंडन नहीं है, मंदिर का खंडन नहीं है। चलो मैं अपनी बात कर लूं। आप लोग जब मेरे पास आए, मान लीजिए कोई परेशानी थी, तो वापस जाते समय परेशानी मुझे दे के जाते हो कि लेके जाते हो, बात ही समझ में नहीं। आप मंदिर गए, एक व्यवहारिक बात, ये जो भरोसे की बात बापू जी ने कहा, बहुत बड़ी सुंदर बात कह, बाकी भजन तो सभी अच्छे थे, एक से एक करके। आप थोड़ा सा देखें, बाजार का खरीदा हुआ फल, कोई भी फल, जब प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, बाजार में खरीद करके जो भी फल आप लाए हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, और आप वैसे के वैसे ही लौटाते हैं। प्रभु के चरणों में बैठे वापस आ गए। ये आप जो नारियल चढ़ाते क्या है, नारियल आप चढ़ाए, हमारा भांतिया पुजारी संत क्या करता है, पहले छीलता है फिर उसके टुकड़े करते हैं। जब प्रवचन के द्वारा मैं आपको छीलता हूं तो भागते क्यों, टुकड़े करना चाहता हूं अंदर के भागते क्यों, प्रसाद तो बनना चाहते हो। मैं कहता हूं कि अहंकार के टुकड़े करो, मोह के टुकड़े करो, तो थोड़ी देर तो ठीक रहता है, बाद में कहते हैं महाराज जी मेरा 6 साल पुराना चप्पल कोई ले गया। ले गया तो पहनेगा ना, तो तेरा नया आ जाएगा, बाप देगा काय कुछ चिंता। आपके बाप के पास कमी है, और सबसे बड़ा बाप है उसके पास कोई कमी नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं।
उसी का बेटा कोई ले गया तो वो अपने बेटे को देगा, इसकी चिंता नहीं। उसी का कोई बेटा ले गया फिर कहते महाराज जी अनाउंस कर दीजिए मेरा चप्पल। एक बार किसी ने कहा था कहा मेरा चप्पल पाल ले चुपचाप बैठ। एक बात आप उस पर नहीं विश्वास है, चप्पल का विश्वास हो या विचार कीजिए। एक प्लेन में आप बैठते हैं, पायलट है लेकिन देखा नहीं, नाम सुना, तो जिसका नाम सुना देखा नहीं उस पर विश्वास है, भले भी नहीं देखे लेकिन नाम तो सुने वो विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। आप जम्मू तवी में चलते हैं बहुत तेज रफ्तार है उसकी, शताब्दी में चलते हैं ड्राइवर को जानते तक भी नहीं फिर भी विश्वास है, यहाँ तो जानते हो क्यों नहीं विश्वास, यहाँ तो जानते हो क्यों नहीं विश्वास, क्यों नहीं बदलता। एक बात करता हूँ तो बापूजी ने जो भरोसे की बात की ना ये बात ठीक है आपको बताऊं, और बड़े प्यार से कहता महाभारत में आया है बड़ी सुंदर बात कहे। युधिष्ठिर के पास कोई आया, भीम बैठे थे महाभारत में उद्योग पर, कुछ उसने मांग की दान की, कहा कल आ महाभारत में। भीम हंसने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर कहते क्यों हंस रहे हैं, कहा आपने इतनी तो गारंटी दे दी कि कल तक ये जिंदा तो रहेगा, कल तक तो ये जिंदा रहेगा और आप भी रहेंगे, लेकिन आप बताइए सच है इस जिंदगी का कोई भरोसा, तो जो कल देना है आज क्यों नहीं दे देते, जो कल देना है वो आज। तो मैं कहता जो अच्छे काम कल करने आज क्यों नहीं कर लेते, आज कहां फंसे हुए हो जो नहीं कर सकते, एक समझाने की बात है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होगी बहुत करेगा कब, विचार कीजिए। आप पेपर उठा के देखिए कितने प्लानिंग लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर तो वास्तव में ये बात है, मैं बताता हूँ क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, ये 57 की बात है। मैं आगरा गया था तो वहाँ पर सब आए थे, तो एक पाकिस्तान से आया हुआ था कातिल सिपाही, शायर है बहुत अच्छा कातिल, तो उसने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई थी, तो पूरा तो मुझे नहीं याद है लेकिन बड़ी सुंदर बात सुनाई थी कि अगर दुनिया को समझ लिए हो, अगर दुनिया को समझ लिए हो लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुम अपने को समझे कि नहीं समझे, तुम तो कहते मैं दुनिया समझ लिया हूँ, जब दुनिया समझ लिए हो तो रोते किसके लिए। उसने शायरी में बहुत सुंदर कि दुनिया को समझ लिए हो तो रोते क्यों हो, और अगर दुनिया समझ लिए तो अपने को समझे कि नहीं समझे, और बहुत सुंदर सुनाया था। और साहिल लुधियानवी भी आए थे तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई थी, वो मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन इतना ही सुनाऊंगा कि पैसे वाले ही मोहब्बत कर सकते हैं, जो ताज बना सके वही मोहब्बत कर सकते हैं, हम गरीब क्या मोहब्बत नहीं कर सकते, ये ताज की बात छोड़ो, ये ताज की बात छोड़ो, और जो सरताज है उससे मोहब्बत करो। बहुत अच्छा सुना, क्या पैसे वाले ही मोहब्बत कर सकते और ताज बनाएगा तभी उसकी मोहब्बत की बातें की जाएंगी। एक बात करता हूँ और भी आए थे बहुत सुन, लेकिन एक जो कादिर सिपाही की बात थी वो मैं आपको सुनाया, ये सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और जिसका भरोसा है जो आप हैं वो मैं सुनाऊंगा। अब जिसका भरोसा है वो आप आत्मा है, उसका भरोसा है, और आप आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं साधना द्वारा, उसका भरोसा है। तो जिसका विश्वास है, जो भरोसा है, वो जानने की कोशिश करो और उसे जान लोगे तो इतना आपको बता दूं, ये जगत में आना जाना चलना फिरना ये एकदम नाटक जैसा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की अपने को तकलीफ होने वाली कोई तकलीफ नहीं। अब उसको समझने के लिए क्या करना है, हमारे भूदेव इतने अच्छे हैं, अलग से राग रागिनी गाए, देखिए यहाँ सब कुछ है, तबला भी है, हारमोनियम भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है ना, लेकिन जब इसे एक रिदम से लय से तभी तो आपको आनंद आया। तो एक तबला यहाँ रखा है, एक पीटने मतलब पहले तो सादा पीटा जाता है और लय से पीटा जाता है तो आपको आनंद आया, तो वो भी कभी लय से पीटता है इसलिए आनंद आता, और आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं, आप हैं बहुत कीमती, लेकिन जब हमारे भूदेव ने लय से पीटा तो लय से कितने सीखना पड़ा, कितना अभ्यास किया मैंने देखा है, जाकर हुसैन जब मिला कहा स्वामी जी 8 साल का था तो मेरा बाप 6-6 घंटे रियाज करता था, जो 8-10 हजार लोग बैठे हुए और उंगलियों में से खून टपकता था, जाकर हुसैन तबला मिला होगा कभी। तो ये आपको जो 1 घंटे आधे घंटे हम सुनाते हैं उसके पीछे आपकी बात कर दूं, आपके यहाँ मेहमान आते हैं आप, हम लोग 15 मिनट में भोजन कर लेते हैं, लेकिन आप कितने दिन से तैयारी करते हो, 1 दिन की तैयारी नहीं, कितनी मेहनत है कि सब मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप देखिए जीवन में लय पैदा करो। स्वामी हरिदास कोई कारण हुआ बात सुनाने की जरूरत नहीं है, उस समय राज किसी और का था, हमारे संतों पर विकट परिस्थिति का सामना उन लोग पैदा करते थे, करना पड़ा, क्योंकि आज उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नाम नहीं लेता, लेकिन स्वामी हरिदास पर कोड़े पड़ने लगे और वो बोलते हैं हरि, इसलिए उनका नाम हरिदास पड़ा, कोड़े पड़े हरि हरि हरि, कोड़े पे कोड़े लगते रहे लेकिन एक भी कोड़ा उनको नहीं लगा। मारने वाला हैरान हो गया कि बात क्या है, अरे जब जाकर मंदिर में देखा तो मूर्ति पर कोड़े लगे हुए कई जगह मैंने ऐसे देखा है, जब आप तल्लीन हो जाते हैं तो कमाल की बात होती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु को बड़ी तकलीफ हुई, कोड़े मुझे पड़े लेकिन कोड़े की चोट से मैं प्रभु में इतना समा गया कि मेरे और उनमें अंतर नहीं रहा, और प्रभु ने बड़ी कृपा की कि सारी चोट खुद सहन करे। अरे हमारा भगवान तो हमारी चोट भी सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका मन कहाँ है पहले वो देखिए। चोट लगने पर मन अगर परमात्मा की तरफ जाएगा तो सब संभाल देंगे, कहीं कोई चिंता करने नहीं। हमारे भगवान कृष्ण ने कह दिया अनन्या चिंतितो मम ये जना पर पास तेषां मित्तां भगेव क्षेम मां। इस पर एक कहानी आपको सुना दूं और परमात्मा की बात पहले का त्याग की तपस्या से प्रभावित हो करके राजा ने फकीर से कहा आपको क्या चाहिए, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चेले बैठे इनसे पूछ लीजिए इनको कुछ चाहिए दीजिए। चेले बड़े अच्छे थे, गुरु की उम्र 80-85 की हो गई थी, चलते थे भ्रमण करते थे। कहा राजन गुरु जी पैदल चलते हैं, इनके लिए एक हाथी दीजिए, हाथी पर बैठा कर इनको गांव गांव हम कीर्तन करते हैं भजन करते हैं तो गुरु जी को तकलीफ ना हो। कहा ठीक है दे दिया। 2 दिन के बाद चेलों ने कहा ये कहानी, गुरुदेव जो फल फ्रूट आता है हाथी सूंड लंबा करके खा जाता है, हम तो भूखे बैठे रहते हैं। कहा ये बात है? कहा हाँ। कहा हाथी जाके राजा को वापस कर दो। राजा पूछता है वापस क्यों लाए? कहा ऐसी बात है, तो जो हाथी दे सकता है उसका प्रबंध कर सकता है, ले जाओ, वहां से राज की तरफ से इसके हाथी का प्रबंध होगा, तुम्हारा भी होगा। कहानी का मतलब यह है, परमात्मा ने सब कुछ आपको दिया है, रोते क्यों हो? अगर रोते हो तो उसके सामने रो, वो छीनेगा नहीं, सब ठीक कर देगा। लेकिन आपको पाकर रोना ही रोता ही सूखा, हाथी खा जाता है, ये होता है, फलाना होता है, आप जाते क्यों नहीं भगवान के पास? रोना है तो उसके पास रो, जा विचार कर। राजा ने हाथी वापस नहीं लिया, भेंट में दिया था। अब इसी का जा अर्थ लगाइए, ये आपका पुत्र भेंट में है, कर्म है लेकिन भेंट पे दिया। बाकी कितने लोग 20 साल से तपस्या कर रहे हैं, एक संतान भी नहीं हो रही, उसकी कृपा हो तो। ये पुत्र आपको भेंट में मिला, लक्ष्मी आपको भेंट में मिली, मकान भेंट में मिला। अब ये भेंट पा करके रोइए मत कि कैसे निभाऊं कैसे निभाऊं, जिसने भेंट दिया उसके पास जाइए, वो सब प्रबंध कर देगा, आपके भेंट वापस लेने वाला नहीं कर देगा, नहीं लेगा वापस, सब कर देगा प्रबंध। जहां से जो चीज प्राप्त होती है वहीं से हर चीज मिलती है। हम आप सब परमात्मा के माता पिता सबका आदर करना है, ये निमित्त है, लेकिन मूल देने वाला परमात्मा ही है। ठीक है, आपके सामने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं, उसकी बड़ी कृपा है। अगर हम आ गया, मेरा जैसा वक्ता कोई नहीं, तभी जीभ पर एक थोड़ा सा दाग पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप को देखें, परमात्मा ने आपको आपके कर्म से कितनी भेंट आपको दी है। आपकी आंखें, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं। अब दुनिया की तरफ देखिए, कुछ कर्म लोग ऐसे किए हैं कि नहीं देख सकते, नहीं बोल सकते, तो हमारे आप पर परमात्मा कितनी कृपा है। जिसकी कृपा है, हमारे संतों ने कहा, भोजन के लिए समय निकालते हो, अपने काम के लिए समय निकालते हो। कबीर पर एक विचार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बड़े आदमी ने कहा, कभी फुर्सत हो तो आप आ जाना दरबार में। कबीर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि राजा, जरूरत पर आप भी महल से बाहर आते हैं और आप अपना काम करते हैं, आपको राजकारण में से समय नहीं मिल रहा है, आपने कहा फुर्सत नहीं है। कबीर को फुर्सत हो तो दरबार में आए, आपको राजकारण में से फुर्सत नहीं मिलती और मुझे परमात्मा के चरणों में से फुर्सत नहीं मिलती, मैं भी नहीं आऊंगा। आपको नहीं फुर्सत तो मुझे भी फुर्सत नहीं है, मैं कैसे आऊं। राजा आए, अपनी भूल को महसूस किया, आमंत्रण दिया, तो कबीर ने कहा है, राजन बहुत अच्छा हुआ आप आए, लेकिन आपसे कहता हूं, बिना आमंत्रण तो मैं उसके घर नहीं जाने वाला, आपके दरबार में तो क्या आऊंगा। मैं संत हूं, या सोचिए तो सही, इसमें अहंकार नहीं है, अहंकार की शून्यता है, लेकिन भाव है। अब आपसे कहता हूं, महाराज जी समय नहीं मिलता, तो सब्जी खरीदने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, गप्पा मारने के लिए समय है, पड़ोसी से लड़ने के लिए समय है, तो परमात्मा के लिए समय कहाँ चला जाता, सब इसी में चला जाता मेरे घर, सब इसी में। एक कहानी हमने सुनी है, हे परमात्मा, आप इतना सब कुछ दिया है, फुर्सत नहीं मिलती, मैं कैसे मंदिर में आऊं। परमात्मा ने कहानी है, परमान लीला के सब खत्म हो गया। फिर परमात्मा बालक के रूप में आए, कहते पहले आप कहते थे कि हमें काम काज इतना है, बाल बच्चे हैं, ये मैं मंदिर कैसे आऊं। अभी तो सब साफ हो गया, तूफान में, धरती कम में, अब तो चलो। कहा अब किसके लिए जाऊं, अब किसके लिए जाऊं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सब कुछ रहते आप समय निकालिए, और नहीं तो हर हालत में आप कोई ना कोई बहाना कर देंगे, अभी ये है, अभी वो है, अभी हारे को हरि नाम। हमारे सूरदास ने कहा, जब हार जाते हो तो हरि का नाम लेते। उसके कहानी सुना दो, और कहानी में बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक कहानी है, इसका मर्म समझिएगा। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कहानी कहती है कि बंगले में आग लग गई, हाहाकार मचा, सब लोग बंगले से बाहर निकले, मैं भी भागा। और बाहर जाके पूछता हूं कि मेरा 2 महीने वाला बच्चा किधर है। नौकर कहता आग लगते मैं भागा, सभी ने कहा। तो बच्चा किधर है? कहा तो बंगले के अंदर आ गया। अब वो कहता है, पुरानी कहानी, 1,000 दूंगा चांदी का सिक्का, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 मेरे बच्चों को निकालो। आज वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खुद कूदने के लिए तैयार नहीं है। आप किसका मोह करते हो, किसका करते हो? एक और कहानी ऐसी है, फिर आपको बताओ। इसमें जो बताना चाहूंगा बाद में बताऊंगा, जिस जगत के लिए रो रहे उसकी बात कर रहा हूं। मैं जगत के खिलाफ आपको नहीं ले जाऊंगा, समझने की बात कर रहा हूं। बेटा थोड़ा ध्यान किया कर सुबह शाम, गुरु ने कहा। अब उन्होंने बहुत अच्छा कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाना सब कुछ कहा, गृहस्थी कहानी है। कहा ठीक है। पत्नी के कान तू ध्यान नहीं लगा रहा है? कहा नहीं, मैं तुझे एक विद्या सिखाता हूं। आज घर जा, पत्नी से कहना कि सिर में दर्द है, और इस विद्या का उपयोग करना। 2 घंटे तक मरेगा नहीं, लेकिन दुनिया समझेगी कि मरा हुआ है, और 2 घंटे का घर का नाटक देख। कहानी वाया किया, बुरा मानिएगा, पत्नी ने सोचा पहले चाबी सब ठीक कर लूं, कहीं सास ना मांगने लगे किधर गया, फिर क्या। बड़ी विचित्र कहानी है। वो कहता है पहले कहती थी तेरे बिना मैं रोटी नहीं खाती, और अभी जानती है मर गया और क्या दुनिया। फिर उसको पत्नी को तो मालूम नहीं था, फिर सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, तो फिर देवर को बताया, वो बता, वो लोग भी अपने ढंग से करने लगे। फिर बता, कहे भाई अभी तो शाम के 6 बजे हैं, जल्दी से कुछ खिचड़ी बना के खा लो, नहीं सारी रात जो है। हाँ तो एक कहानी है। अब 2 घंटे पूरे होने का है, और कहते कि भाई जो मैंने कहा तो लोगों को पता चला, मरा अभी तक कोई रोया भी नहीं कोई। तो महात्मा जी आए, फकीर आए, कहो भाई कैसे? अरे अरे महाराज जी सर, तो सब उनको देख के तो अभी भी बताऊ ना, कोई मर जाए आगे पीछे हंसते, हम जाते हैं हमें देखते ही रोने लगते हैं। देखा इसलिए कहता हे भगवान, ये असली आंसू है कि नकली भगवान बने। तो महात्मा, महाराज जी महाराज जी अच्छा हुआ है। अरे क्या हुआ? ये भी नहीं बताया कि किसने 2 घंटे, अभी थोड़ी देर पहले लड़का आया, ये हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आप देखिए तो सही। कहा नहीं ये तो ठीक है, 2 घंटा पूरा हो गया। कहा बेटा आराम कर, रात उठ। अब देखा पूरा नाटक। कहा बाप चलिए आपके साथ, देख लिया पूरा नाटक ये सब। मैं आपको आपकी पत्नी से अलग कर नहीं करना चाहता, बाप से अलग, घर से अलग नहीं कर, लेकिन इनके लिए कोई गलत रास्ता ना बताइए, इनको खुश करने के लिए कोई गलत रास्ता
नहीं।
बस ये करता। आर के शर्मा आई जी, पत्नी को खुश करने में 5 करोड़ के चक्कर माया, तो आज पत्नी भी कहती है स्वामी जी बेवकूफ को लेना नहीं आता और आजीवन कारावास। तो मैं ये जो पंडित जी ने भरोसे की बात किया, भरोसा अपनी सच्चाई का, अपनी अच्छाई का, अपने शब्दों करो, किसके लिए आप कपट करते हो, किसके लिए छल करते हो। मैं अलग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पास आके जब अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप अपना फर्ज अदा करो। मैं पिता हूं, पिता का फर्ज अदा करो। मैं गुरु, मेरे पास भी लोग बताते हैं। मैंने कहा गुरु का क्या धर्म है। अब लोग ऐसी ऐसी बात लेके आते हैं, महाराज मैं भाई से अलग होना चाहता हूं, आप मुहूर्त बताइए। मैंने कहा मिलाने का मुहूर्त बताता हूँ, अलग होने का मुहूर्त नहीं बताता। मैं मिलाने का मुहूर्त करता हूँ, अलग होने क्या मुहूर्त। और अलग होना तो वकील के पास जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। गुरु का काम मिलाना। और आज तक कई लोगों ने पूछा कितने लंबे समय तक आपकी सफलता में क्या चीज रही। एक ही चीज रही, वो आपको कहता मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे सगे भाई हो कि पति पत्नी हो कि कोई हो, मैं किसी की हल्की बात सुनता नहीं, हल्की बात देखता नहीं, बोलता नहीं, हल्की जगह जाता नहीं। और कोई हल्का किसी तरह आया तो उसे बलवान बना के भेजता हूँ, हल्का बना के नहीं भेजता। भाई भाई की बात आती, क्या बात है, अरे तो तू कर्म करना, क्या 10-20 हजार के लिए लड़ता है, जितना भाई से लड़ेगा उससे ज्यादा तो निर्माण करके कमा के कमा लेगा। मार गोली क्या हुआ, क्या 10 हजार के लिए समय करता है, कोई और बात हो उसके पास। तो मैं कंस्ट्रक्टिव बनाता हूँ, ये कहीं की कोई बात है, कोई बात हुई तो बुरा ना मानिएगा। जैसे यहाँ आता हूँ कुछ लोग मेरे आते हैं, ऐसे 2 साल पहले किसी ने किया कोई, तो मैंने प्रवचन में कहा, नाम नहीं लिया, मैंने कहा मेरे बुजुर्गो 100 साल के बाद जाओ तो बच्चों पर अपने घर पर ज्यादा नहीं ते 5 लाख का देवा करके जाओ, ये नहीं लड़ेंगे, नहीं तो एक लड़का पैदा करो। क्योंकि आप वो जो जमा करके जाते हैं लड़ाई उसकी होती है, आपकी नहीं होती। और एक रहेगा तो लेना है कि देना है, कोई झगड़ा नहीं। बड़े प्रवचन में कहा और बताया, 2 भाई हैं, बात वही थी नाम में, 2 भाई हैं, अचानक पिताजी हार्ट अटैक में गए, पिताजी मेरे पास रहते हैं, तो लोगों ने छोटे भाई को कहा कि देख अचानक पिताजी गए, इसमें तो कुछ रस भी लगता है, लेकिन खूब पैसा बड़े को दिया, तेरे को कुछ नहीं दिया। कैसी दुनिया है, एक बात कहता हूँ, फिर बात मेरे तक क्या पूछते, महाराज ये बात सही है कि बड़े भाई ने दबा लिया है। मैंने कहा उसने क्या था, क्या दबाया है, तो मैं उसका गुरु हूँ, मैंने भी दबाया हूँ। क्या पूछ रहा, कुछ नहीं, दोनों को बुलाया, फिर बात किया, ऐसे किया, सब कुछ हुआ। कई बार क्या है, मैं आपको बताऊं ना, मैं एक किस्सा आपको बता दूं जैसे सुन के आप ताजुब करेंगे, इसलिए आप समझिए। बड़े प्यार से कह रहा, पत्नी ने शिकायत की कि मेरा पति मेरे झूठ बोलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मेरा चेला झूठ नहीं बोलेगा, मेरा चेला है, बाद में तू आइए। कहा इसलिए तो मुझे आप पर विश्वास है। मैंने कहा ठीक, मैं बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसा कह स्वामी जी आपसे अंगत बात करूंगा, अंगत बात करूंगा। मैंने कहा ठीक, मैंने पत्नी से कहा जो मेरी एक खिड़की जो बंद रहती है उसका कारण है, कभी कोई अंगत बात हो मैं कहता आप पीछे जाके खड़े रहिए, जो बात करता हूँ सुनिए, उसमें फिर मक्खन नहीं लगाना है, सुनिए। मैंने कहा बेटे झूठ बोलता है। कहा हाँ स्वामी जी बोलता हूँ। किससे बोलता है, पत्नी से, और किस, कहे गुरु जी आपकी कृपा से तो इतनी अच्छी पत्नी मिली, आपने आशीर्वाद दिया था, और गुरु जी मुझे माफ करना, उसको बहुत मानता हूँ, है कि नहीं। और अंग्रेज में कहता है आई लव हर वेरी मच। मैंने कहा तो अच्छी बात, आपने कहा आपने दिया है तो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि बताने से वो दुखी ना हो, वो बताने से दुखी ना हो इसलिए मैं नहीं बोलता। और कहते तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि दूसरे लोग बताते हैं। एक बार कुछ कंपनी का घाटा हो गया तो नहीं बताया, इसलिए कि काय को मैं वो कर लिया, घाटा पूरा कर लिया, उसको क्या दुखी करना। सुना तो आगे पैरों पर गिर गई, पहले बताना था ना गुरु जी ने। अब देख ले कई बार कितनी बातें ऐसी हैं कि बिना समझे हम लोग आरोप लगाना। हमारे सुदामा की क्या हालत है, अच्छा हुआ नहीं मांगा, लेकिन जब घर आए, अरे कई बार पति भी अच्छे होते हैं, बाप भी अच्छा होता है, गुरु भी अच्छा होता है, भगवान भी देते हैं, लेकिन बता के नहीं। लेकिन एकदम विचार कर लेना ये ठीक नहीं। तो सबसे पहले अब मेरी अपनी विचारधारा, नारद भक्ति सूत्र में भगवान विष्णु ने नारद से कहा, तुम कीर्तन करो, भजन करो, सुनाओ, ये मेरा जगत है, ये त्रिताप से पीड़ित है, कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई ईर्ष्या से, किसी को शरीर में रोग है, किसी कुष्ठ रोग है, कोई धन से, लेकिन जब मेरा भजन सुनेगा, इनका मन मेरे में लगेगा, तो कुछ तो इनका भला होगा। कहा क्यों, उसी बात मेरे कच्ची लगती है, ये जगत मेरा है, देखिए ये विष्णु का देह, जगत मेरा है, इनकी सेवा करना मेरी सेवा है, इसलिए मैं आपसे कभी किसी को त्याग की बात नहीं बताऊंगा, परमात्मा की भेंट मान करके उसकी सेवा करो, पूजा करो, बाप देगा, हमें किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। नारद जी भगवान से शक्ति प्राप्त किए, इस पर कहानी है। नारद जी से किसी ने पूछा, मैं इतना गरीबों को खिलाता हूं, इतना दान करता है, इतना पुण्य करता है, भगवान से पूछना कि इसका फल क्या मिलेगा, ये कहानी है। नारद जी आए, भगवान से पूछे, भगवान ने जवाब दिया, और फिर व्यक्ति मिला, भाई भगवान से पूछा, कहा पूछा, भगवान ने क्या उत्तर दिया, कहते हैं कि मेरी कृपा से इतना खिला रहा है, पिला रहा है, बस मेरी कृपा का अधिकारी बन, और जिनको खिला पिला रहा है ये भी तेरा कर्म है, और किस कर्म की फल की जरूरत है, ये फल है, ये फल है जो तू कर रहा है, तुम्हें ये फल बराबर मिलता रहे, बस यही प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मैं रोज खिलाता रहूं, करता रहूं, और जिनको खिला रहा हूं, कर रहा हूं, उनसे कुछ मांगने की इच्छा उससे मांगो। कितनी सुंदर बात, हमारे बड़े बड़े संत सिद्ध संत हुए, हर संप्रदाय में हर, लेकिन जगत की सेवा की, उन्होंने त्याग की बात की, किस चीज की त्याग की बात, अहंकार का त्याग करो, ममता का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, फिर जो आप हैं वो आप हो जाएंगे। आप क्रोध में कब तक रह सकते हैं, आपका विज्ञान भी कहता है जो चीज लंबे समय तक नहीं रह सकती वो क्षणभंगुर है, वो शाश्वत नहीं है। हम प्रेम में, कीर्तन में, भजन में घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन तनाव में नहीं बैठ सकते, गाली नहीं दे सकते, क्रोध में नहीं बैठ सकते, ते सब क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर पकड़कर जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसको दबा दिया, दबा दिया। स्वामी रामतीर्थ ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, उनके पास कोई आया, ये पंजाब की बात है, बहुत पुरानी बात है, कहते जमींदार किसान को वहां जमींदार चौधरी बोलते हैं, जमींदार मतलब किसान, आपके खेत में कुआं है, कहा कैसे बनाया, ऐसे, फिर क्या किया, पहले मिट्टी निकाला, फिर कंकड़ निकाला, फेरे निकाला, कहा हाँ, निकालते गए, तो आपने निकाला कि पानी बनाया, कहते नहीं, निकालता गया, पानी अपने आप आ, इसलिए अंदर परमात्मा है, ये सब निकालते जाओ, अपने आप प्रकट हो जाएगा, तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने पानी नहीं बनाया, बल्कि पानी। इसी तरह से राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, दूसरे का सुख ठीक से नहीं देख पाते, ये सब इतने भर गए हैं कि परमात्मा दब गया। और इसी को जब निकाल दोगे तो पानी आप नहीं बनाते, उसको आप प्रकट करते, आप लाते। लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब घर्षण होगा तो उसमें, अब यही याद देखिए, पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप घंटों राम राम की बात करते हो, किसको मोम के क्या, या विचार करो। अब पढ़े लिखे को जब समझाता हूँ कहते आपकी बात ठीक है। दो तरह की लकड़ी आपके पास है, एक सूखी और एक अभी हरी, मतलब कल का पेड़ कटा हुआ है। तो सूखी लकड़ी मेरे हाथ में है और हरी लकड़ी जो कल आप तोड़ के लाए आपके हाथ में है। मेरे पास जो सूखी लकड़ी है उसमें अग्नि जल्दी प्रकट हो गई और आपके हाथ में नहीं, तो पहले उस हरी लकड़ी को सूखी बनाना है। आत्मा मेरे पास भी है, आत्मा आपके पास है, लेकिन मेरी आत्मा राग द्वेष को सुखा दिया है, इसलिए जल्दी नाम पकड़ लेती है, और आप गीले हैं, आप उसमें हैं, इसलिए थोड़ा सुखाने में समय। एक और उदाहरण दे दूं, आपके पास मैच बॉक्स है, पेटी, चूल्हा जलाना है, मेरे पास जो मैच बॉक्स है सूखा है, तुरंत आग पकड़ती है, और आपका जो गीला मैच बॉक्स है पानी में है, पूरी खत्म हो जाएगी तो भी आग, पूरी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन आग नहीं पकड़ेगी। हृदय को सुखाओ, सुखाने मतलब ये जगत का अभाव। जगत क्या है, आप लोग रामायण पढ़ते, हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया जगत की परिभाषा, और वो रामायण में भी आया, संसार मूलम किमस्ति, ये हमारा वेद कहता है, चिंता विचार राग द्वेष ईर्षा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया मैं और तोड़ तोड़ते माया, ये जो मेरा तेरा कर रहे हैं। हमारे बापू जी सुना ना, भर किस चीज का भरोसा, गए तो लोग होटल में खाने के लिए बड़ी प्लानिंग करके कहां से कहां पहुंच गए, ताजमहल में, ओबराय में, नरीमन हाउस, कहां से कहां पहुंच गए। मैं कहता आज रात में हमारे बुधदेव भजन करेंगे, तो कहते कल आऊंगा, और कल आए नहीं, चला गया। एक बात कहता, तो जा विचार करो, ये जो कीर्तन है, भजन है, पूजन है, मंदिर में जाना है, काम करना है, काम करते करते आप परमात्मा तक पहुंचते हैं, और परमात्मा तक पहुंचने के बाद भी आप काम करते हैं, दोनों तरफ बता दें। हम किस संत का उदाहरण दें, सभी के नाम लेता हूं, दोनों तरह के संत हैं। संत ज्ञानेश्वर की बात करूं, देखने में कर्म नहीं किया लेकिन परमात्मा के प्राप्ति के, सूरदास की बात करूं, तुलसीदास की करूं, अब कबीर की करूं, भगवान बुद्ध के, महावीर के, सबके। जैसे कबीर के बाद और बुद्ध के बाद क्या मेल कराता हूं, कबीर कर्म करते करते परमात्मा तक पहुंचे और अपना कर्म करते रहे, भगवान बुद्ध शून्य बने, समाधि में गए, महावीर बने, लेकिन फिर भी जगत को शिक्षा तो दी, संभाला तो सही। वो इस ढंग से गए, वो इस ढंग से गए। अब मनोविज्ञान क्या कहता है, कर्म करते हुए मन को जल्दी आप साध सकते हैं। ये संगीत वेद की बात है, ये पंचम स्वर परमात्मा का है। संगीत के माध्यम से जितना आप परमात्मा के पास जल्दी पहुंचेंगे उतने दूसरे ढंग से नहीं पहुंचेंगे। एक बात कहता हूं, अगर आपको सुनाए सुन के ताजुब करेंगे, ये हमारे यहां कभी कोई उत्सव होता है, मेरी लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, इतने आप प्रसन्न रहते हैं, बुलाते हैं, खान पान की बात नहीं है। वेद कहता है किसी भी तरह जब आप प्रसन्न होते हैं तो परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाता है। और जब वो परमात्मा प्रसन्न हुआ, खुशबू हुई, तो खुशबू का आनंद सब लेते हैं। मेरे पास एक गुलाब का फूल है, अभी खिला नहीं, लेकिन जब खिलेगा फूल मेरे पास रहेगा, लेकिन सुगंध तो। इसी तरह से पंचम स्वर से, संगीत से, या किसी भी तरह जितनी देर तक आप प्रसन्न रहते, सत चित आनंद, सत है चैतन्य आनंद, जब आनंद किसी तरह प्रकट हुआ तो आनंद सबका हो जाता है। इसलिए आप देख लीजिए, आज मैं लड़के के शादी 10 दिन से जाग रहा हूँ, कभी नहीं बीमार पड़ूंगा, लेकिन पड़ोस के यहाँ 2 घंटे जागा, तनाव में जागा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ये संगीतकार है, ये भजन में आंसू आता है डोंगरे महाराज को देखा, लेकिन आंख नहीं खराब होती। लेकिन रुपया पैसा छिन जाने पर 2 दिन रोइए तो तीसरे दिन आंख खराब हो जाती, खराब हो जाती। ये जो भरोसे वाली बात बापू जी ने सुनाया, भूदेव ने, परमात्मा हमारे साथ, उसी के आप स्वरूप हैं, और बाकी जो कुछ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है, जा विचार करो। इस समय ठंडी पड़ रही है, परमात्मा कृपा से सबके पास गर्म कपड़े हैं, आप गर्म कपड़े कब तक पहनेंगे? फिर आएगी गर्मी, फिर आएगी बरसात, तो आप इस साल भर में भी कई बार गर्म कपड़े पहने उतार दिया, लेकिन आप तो वही हैं, रेनकोट पहने फिर उतार दिया, तो कितने सालों में आप गर्म कोट पहनते उतार कर रख देते हैं, गर्म स्वेटर पहनते उतार फिर पहनते करते, लेकिन आप तो हैं तो वही के वही। इसी तरह समय समय पर कर्म से कितनी बार हम आप शरीर बदल दे, लेकिन आत्मा वही की वही है, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर्माधीन। लेकिन उसे अगर आप समझ लेंगे तो चलिए, स्वामी जी मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति है फ्रंट की लड़ाई। अगर आपका कोई लड़का मिलिट्री में है, ब्रिगेडियर है कि कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल के कैप्टन कुछ भी है, मान लो आपका लड़का कैप्टन है, लड़ाई में गया तो क्या करेंगे, कितना सामान लेके जाता है, बाल बच्चे भी हैं सब कुछ है, लेकिन साथ लेके नहीं जाता, इसका मतलब घृणा भी नहीं, अपने साथ सामान भी ज्यादा नहीं ले जाता जितना जरूरत है। तो जैसे फ्रंट की लड़ाई पर लड़के के पास सब कुछ है, पूरा परिवार है, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन लड़ाई के समय वो बहुत कम सामान लेकर के जाता है। आपके पास सब कुछ है, आप नर्मदा में स्नान करने गए, कितने कपड़े लेके जाते हैं, आपके पास 100 जोड़े हैं, 100 जोड़े लेके जाते हैं, स्नान करने जाते कितने लेके जाते हैं। इसलिए परमात्मा के नाम में स्नान करना है, परमात्मा तक पहुंचना है, लड़ाई है, इसलिए सब कुछ रखिए, कोठी भी रखिए, बाल बच्चे भी रखिए, लेकिन जिस समय लड़ने जाइए उस समय इनका ध्यान करोगे तो कमजोर हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ध्यान के समय ये सब हमें कमजोर बना देते हैं, इसलिए मन को ऊपर ले जाना है, घृणा नहीं करनी है, घृणा रहे, डोंट हेट। कहते महाराज जी बाल बच्चों को छोड़ने से परमात्मा मिलेगा, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ छोड़ छाड़ के चलो, मिल जाए फिर वापस आ जाओ। समझना है, एक उदाहरण दूंगा, आप लोग हैं यहाँ, मैं कहा था आप लोग जाइए मुझे सोना है, ये गारंटी नहीं है कि आपके जाने के बाद मुझे नींद आएगी, आप यहाँ बैठे रहिए, नींद आ गई, आप हैं कि नहीं है उसका भी ज्ञान नहीं है। मैं कहता छोड़ना कुछ नहीं है, आप आत्मस्थ हो जाओ, परमात्मा में बिल अपने आप को लीन कर दो, कोई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। और कोई ये कह दे कि घर छोड़ने से परमात्मा मिलता है, तो आए तो हो छोड़कर, एक बात कहता, समझना है, जानना है। जिस चीज का भरोसा है आप है कौन? हम सब परमात्मा की संतान है और उसका गुण हमारे आपके अंदर है। जरा एक व्यवहारिक चीज आपको बता दो तो आप समझेंगे कि जगत से नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करनी है, इसको समझना है। महात्मा जी ने कहा, जा समझने की बात है कि सब में परमात्मा है। चेले जा रहे हैं, सामने एक हाथी आ रहा है। महावत ने कहा आप रास्ते से हट जाइए, हाथी गिरवे बस देकर भड़कता है, अभी इसको ये संस्कार इतना नहीं मिला महात्माओं के बीच में रहने का। उनका गुरु महाराज ने कहा सब में परमात्मा है, नहीं हटे। हाथी ने थोड़ी चोट पहुंचाई, फिर भागे, कहानी है। फिर आए गुरु के पास, गुरु जी आप कहते हैं परमात्मा सब में है लेकिन मुझे अब विश्वास नहीं है। नहीं विश्वास है, क्या बात हो? आपने कहा परमात्मा सब में है तो हाथी आ रहा था, और मैंने कहा इसमें परमात्मा है तो मेरा बुरा क्या करेगा, गुरु तो सिद्ध थे। कहे उस परमात्मा के ऊपर भी तो एक परमात्मा बैठा था, महावत उस परमात्मा ने क्या कहा था कि रास्ते से हट जाइए। तू सब में परमात्मा मानता है? हाँ हाँ। तो उस परमा हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था उसने क्या कहा? कहा कहा तो था कि रास्ते से हट जाइए, तो उस परमात्मा की बात क्यों नहीं मानता? एक और मेरे पास आए, महाराज जी सब में परमात्मा है और आप कहते हो परमात्मा ही कराता है, तो मेरे मन में आया इनको थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा कि उसके परमात्मा ने कहा कि इसको लकड़ी मार, वो भी परमात्मा ने, आपके परमात्मा ने कहा थप्पड़ मारो और सामने वाले परमात्मा ने कहा इसको, तो उस समय परमात्मा क्यों नहीं सोचे? हाँ ये बात तो ठीक, अपने लिए परमात्मा सोच लिया। हम मूर्ति उठा के लाए, जज पूछता क्यों लाए? कहा भाई परमात्मा मेरा भी है, मैं गरीब था लाया। कहा मूर्ति लाए कि सोना लाया? तू तो सोना लाया। एक बात कहता, इसलिए समझने की बात है, जानने की बात है। अगर द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके एकलव्य इतना आगे पहुंच सकता है तो आप अपने विश्वास से क्यों नहीं पहुंच सकते? जा विचार करो। इसलिए पूज्य बापू ने जो विश्वास की बात की, भरोसे की बात की, चाहे आप नदी के किनारे रहें, मंदिर में रहें, मस्जिद में रहें, गुरुद्वारे में रहें, खंडन नहीं, विश्वास। इसलिए कबीर ने कह दिया, कबीर की बात आप नहीं समझ रहे हैं। कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, लाली मेरे लाल के जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर खंडन किस बात का? हम राम को देखने गए राममय हो गए, किसको देखने गए किसमय हो गए? इस चीज को समझिए। लेंगे कभी ने तो खंडन कर दिया, मंदिर न जाओ मस्जिद। मैंने कहा नहीं, उनका कहने का मतलब यह है कि मंदिर जाकर के भी तुम रो रहे हो, आपके पास डॉक्टर है और आपको भरोसा है तो मुझे ठीक करेगा, थोड़ा समय लग सकता है। देख डॉक्टर पर इतना भरोसा, आपकी माँ आपके साथ है, माँ पर इतना भरोसा, पिता पर इतना भरोसा, तो भरोसे वाली बात है। इसलिए जा इस शब्द पर ध्यान देना, हरिद्वार जाओ, बनारस जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, मेरे पास आओ, नर्मदा में नहाओ, गंगा में नहाओ, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो कबीर के शब्दों में कह दूं, एक जगह आप नहा रहे हैं, थोड़ी दूर पर पशु नहा रहा है, आप उसमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर, वो भी गंगा में नहा रहा है। और आप भी ना रहे, इसलिए जो भी करो वो विश्वास से भरोसे से। गुरु ने कहा दो चेलों को बुला, यही विश्वास वाली बात। गुरु ने दो चेलों को बुलाया और कहा, कहानी है, जहां कोई न देखे वहां एक कबूतर की मार करके मुझे लाओ, जहां कोई न देखे। कहानी है, एक चेला आश्रम के पीछे गया ला के, कबूतर मर गया कहा। दूसरा दो घंटे बाद आया, गुरु जी आपने कहा जहां कोई न देखे, जहां कोई न देखे वहां इसे मारना, और आप कहते हो कि तुम में भी परमात्मा है, तो मैं तो देख रहा था कि मार रहा हूं, तो कहां कोई देखे, इसलिए कोई जगह ही नहीं मिली। और एक चेला मंदिर के पीछे गया, कहां नहीं है वो, ये विश्वास या विचार कर। इसलिए खंडन मंदिर मस्जिद का नहीं है, प्रहार यह है कि आपकी कमजोरी का। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मन कमजोर हो गया, उसी कमजोरी को दूर किया। कृष्ण के कई अर्थ है, एक अर्थ है उसके सानिध्य में जो रहेगा उसकी कमजोरी दूर होगी, और जो आपकी कमजोरी दूर करे वही जगत गुरु है। और जगत गुरु क्या है कि आपको अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए नीति नियम का पालन है तो ठीक है, नहीं अपना नियम बनाएगा, इसलिए जगत है। हम गुरु लोग नियम का पालन करेंगे, लेकिन जगत गुरु कैसे आप प्रकाश में आए, कैसे आपकी कमजोरी दूर हो, वही देखेगा। या विचार करो, कुछ क्षणों के लिए आप भी कमजोर हो जाते, बल्कि बुरा न मानिएगा। और बड़े प्यार से मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें कुछ और न समझिएगा, लेकिन जो कह रहा हूं, राम को शंकर की पूजा क्यों करनी पड़ी, ये जबरदस्त मनोविज्ञान है। हमारे आपके पास कितनी शक्ति हो, लेकिन अगर कोई आधार है तो वो आधार ऐसे क्षणों में जब हम कमजोर बनते हैं तो बनने नहीं देता। इसलिए आपसे भी कहूंगा, कितने बलवान हो, कितनी रिद्धि सिद्धियां हो, लेकिन आप भी किसी के सहारे लेकर चलोगे तो आप याद रखना। इसके लिए उदाहरण आया, एक नावड़ी कर्म से बनाई गई, एक खेने वाला है, सब कुछ है, उसकी एक कहानी आती है। हम 15 महात्मा नावड़ी में बैठ गए, उसमें एक नए महात्मा थे, नावड़ी डगमगाने लगी तो पुराने महात्मा कहते हैं, मैं रोज आता जाता क्यों घबराता है, तेरा मेरे पर विश्वास है तो मेरा चलाने वाले पर विश्वास है, इसलिए तू किसी के न कर, मेरा कर, मैं नहीं घबरा रहा तो तू क्यों घबरा रहा, आपका गुरु नहीं घबराता तो आप क्यों घबराते, तू मेरा से नया है, मैं घबराया नावड़ी की डगमगा देकर। ये जगत में डगमगाहट आएगी, हलचल आएगी, लेकिन जब आप जिसको पकड़े हो, राम को के, कृष्ण को के, गुरु, ये नहीं घबराए तो आप क्यों घबरा जाते। राम घबराए, आपकी पत्नी तो बिना पूछे आपसे बिना पूछे बाप के घर जाते, घबरा जाते हो, रोटी कौन बनाएगा। एक बात करता, कितनी सुंदर कहानी, एक और कहानी है, ये विश्वास की बात, छोड़ना कुछ नहीं। नए चेले के साथ गुरु जी विहार कर रहे हैं, जंगल आया, कहानी है, शेर दहाड़ने लगा तो चेले को पसीना छूट गया, चेले को, गुरु जी कहते बेटा मैं भी तेरे साथ हूँ, तेरे पसीना क्यों छूट रहा है। कहा शेर दहाड़ रहा है, कहा सुन तो मैं भी रहा। तो गुरु जी आपको पसीना क्यों नहीं छूट रहा है? कहते मेरा गुरु मेरे अंदर है। तो कहते तेरा गुरु अभी बाहर क्यों कर दिया, अंदर आए बाहर क्यों रखे? मेरा गुरु मेरे अंदर है, इसलिए मैं नहीं घबरा रहा। यहाँ गुरु मतलब चाहे राम मानो, चाहे कृष्ण मानो, चाहे कुछ मानो, चाहे मूर्ति मानो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन सबसे बड़ी बात भजन में आज जो इस हुआ, ये जो भरोसे वाली बात है आप विश्वास का, बाकी इसका कुछ भी भरोसा नहीं, इसका कोई कहीं नहीं। इसीलिए तो हमारे देखिए इतने बड़े सिद्ध त्रिकोल जो बात कही गई है, केवल राम की बात नहीं है क्या? हमारे यहाँ रामायण में कह दिया, न जाने जानकी नाथे सवारे सूत हवानों चे। अरे रामायण पढ़ते हो, उसमें इतने बड़े सिद्ध संतों ने कह दिया, तो हमारी आपकी तो न जाने जानकी नाथे सवारे, वही क्षणभंगुरता क्या होगा। इसलिए मैं प्रार्थना किया हूँ, हमारे रहेंगे भूदेव आज भी और कल भी प्रार्थना, और जाएंगे तो मैं बताऊँ, एक पंजाब, यहाँ पंजाब वाले, पंजाब कहानी है। अरे भाई एक है, वो अपने गुरु का पांव पकड़ लिया तो गुरु बेचारे कहेंगे ना मैं ब्राह्मणों का पांव पकड़ लूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। जाएंगे कहते पांव पकड़, मैं तो ब्राह्मणों को मानता ही हूँ, बहुत मानता हूँ, भूदेवों को मानता हूँ, ये तो हमारी स्वांस है, इनके बिना तो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो चार से छह भी भजन भी होगा और प्रवचन भी होगा। इस समय इतना ही कीजिए, जो है आपके पास जो शाश्वत है उसका विश्वास करो। ये शरीर जाएगा लेकिन गुरु का दिया हुआ शब्द न्याय कहता शब्द न राम का मिटेगा न कृष्ण का मिटेगा, इसलिए गुरु ने भी जो शब्द दिया वो कभी नहीं मिटेगा। जब तक गुरु का शब्द आपके पास है, सारे पहाड़ सारी दुनिया ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस विश्वास के साथ कर्म करते हुए गुरु शब्द का स्मरण करते रहो। हाँ आते आते करता।